तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसपे हमारी सारी आध्यात्मिक जिंदगी निर्भर है, वो है हमारा हरे कृष्णा महामंत्र का जप। तो खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में भगवान के नाम की महिमा बताई है। कलयुग में विशेष करके भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, ये खुद चैतन्य महाप्रभु जो कौन है, साक्षात भगवान है। हो गया सबका, शुरू करें आपकी अनुमति है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना फायदा होगा आपको, हाँ सारी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। तो ये विषय है भगवान के नाम के बारे में, विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान से भी ज्यादा किसे भगवान का नाम कृपालु है। और ये श्लोक जो बता रहे हैं हम, जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो खुद इस कलयुग में जब भगवान भक्त के रूप में आते हैं उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। जब वो अपने गुरु महाराज से मिले पहली बार गया में, तो गया गए तो काम से गए हो क्योंकि जीवन बदल गया उनका, क्योंकि जो भी गया जाता है वो काम से गया जाता है। तो इसलिए जब वो अपने गुरु महाराज से मिले और वो गुरु महाराज ने उनको मंत्र दिया, तो जब करते ही उनको कृष्ण प्रेम का भाव आ गया। तो उसके बाद जब अपने घर लौटे, उसके बाद उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोला है कि हरिनाम का महत्व क्या है, विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग के जीव है वो बहुत ही दुर्भागी है। दुर्भागी क्यों है, क्योंकि भगवान से भाग रहे दूर, दुर्भागी है? ऐसे दुर्भागी जीवों के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण है जो भगवान के करीब आ सकते हैं, भगवान से टूटा हुआ नाता जोड़ सकते हैं। जैसे फेविकॉल के एडवर्टाइजमेंट होती है, सब कुछ जोड़ता है सिवाय टूटे हुए दिल छोड़कर, लेकिन भगवान का नाम ऐसा फेविकॉल है जो टूटे फूटे रूटे सब दिलों को जोड़ता है। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में बताया गया कि भगवान हरि का नाम और हरि का नाम ही सिर्फ कलयुग में आपको बचा सकता है। और कोई रास्ता नहीं, यही मात्र आखिरी रास्ता है, और रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए कृपा करके इस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या बाकी मंत्र स्ट्राइक पे चले गए हैं? बाकी मंत्रों का क्या, तो इसे महामंत्र कहते हैं। मंत्र और महामंत्र में अंतर क्या है, बाकी जो मंत्र है आपके पाप ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, वो भी उसमें शक्ति हो तो, ये बाबा का मंत्र, वो बाबा का मंत्र, ए आई का मंत्र, वो किस प्रकार है, जैसे गंगा में स्नान करते हैं कपड़े के साथ, तो जब डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाते हुए आप अंदर जाते हैं कपड़ा ऊपर आता है पानी के ऊपर, उस प्रकार जब बाकी मंत्रों का जप करते हैं तो थोड़े क्षण के लिए ऊपर आएंगे वो कपड़े के समान, और जैसे आप ऊपर आएंगे मंत्र से वापस के शरीर को चिपकेंगे वो पाप। तो ये गति है बाकी सभी मंत्रों की। जैसे कई संप्रदाय में, कई धर्म में हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जो संडे के संडे क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं कि ये मेरे पिछले हफ्ते की लिस्ट है, जितने भी पाप किए वो माफ कर दो और अगले हफ्ते के लिए अनुमति दे दो। तो पैसा डालते हैं और कन्फेशन करते हैं। जैसे एक बेवड़ा था, उसको बताया कि आप बहुत दारू पीते हैं, पाप है, आप नरक में जाएंगे, आपको कन्फेशन करना पड़ेगा, भगवान के पास जाके माफी मांगना पड़ेगा। तो चर्च में चला गया और जहां वहां पे फादर थे उनको पता कि ऐसे से बहुत मैंने ये आप दारू पी है, बहुत पाप किया मैंने। तो बोले कुछ नहीं, आप भगवान से प्रार्थना करो, 10 रुपये हुंडी में डालो और जल्दी चले जाओ। तो 10 रुपये डाल करो बाहर निकलता है। तो दूसरा बेवड़ा मिलता है, कहां गए थे आप? चर्च में गया था। क्या कर रहे थे? बोला ऐसे से बहुत दारू पिया कल मैंने, तो भगवान से माफी मांगने के, जो पाप किया है उसको माफ करने के लिए। तो दूसरा बेवड़ा अंदर जाता है और फादर से कहता है कि बहुत मैंने भी कल दारू पी और मुझे भी क्या करना है, भगवान से माफी, क्या करना पड़ेगा? बोलते 10 रुपये डालो और भगवान से माफी मांगो। तो जो फादर होते हैं वो देखते रहते हैं, वो किसी में से 20 रुपये निकालता है और 20 रुपये हुंडी में डालता है। बोलते कल अपने दारू पी, इसका 10 रुपये ही सिर्फ हुंडी में डालेगा। बोलता कल का लगे, अभी आज का ये 10 रुपये, कल का जो एडवांस में मैं अभी से डाल के बता दूं। उस प्रकार हम देखते हैं कि कितने भी हम जप तप करें लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि इतने शक्तिशाली नहीं है। कलयुग का प्रभाव इतना है, माया का प्रभाव इतना है कि माया उतनी ही शक्तिशाली भगवान के समान। भगवान क्या कहते हैं, मम माया दुरत्तया। लेकिन माया को पार करना है, कलयुग का सामना करना है, तो भगवान की शरण ले रहे हैं। भगवान आगे क्या कहते हैं, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षायसी मा सुच। वो कहते सर्वधर्म का पूजा। धर्म क्या है? धर्म है भगवान, धर्मम तु साक्षात प्रणीतम, जो भगवान के मुख से वाणी बाहर निकले उसे धर्म कहते हैं। जो भी भगवान की इच्छा है वो धर्म है, बाकी जो धर्म है वो मनोधर्म है, शारीरिक धर्म है, शरीर से संबंधित है। मनोधर्म, शारीरिक धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, वो धर्म, ये धर्म, जो भी किए हमने शरीर से संबंधित है, जब तक शरीर है तब तक वो हमारे साथ रहेगा, शरीर के बाद वो धर्म छूट जाएगा और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या करे, सर्वधर्मान परित्यज, बाकी सर्वधर्म को त्याग करके मुझे शरण आ जाओ। और कलयुग में भगवान की शरण आने का मतलब क्या है, भगवान के नाम की शरण, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षायसी मा सुच। कि डरो मत, मैं तुमको हरेक पाप से मुक्त कर दूंगा, जो भी पाप का लेप लगा है आपके शरीर पे उसको मैं खुद निकाल दूंगा। जिस प्रकार यहां पे बता रहे भगवान की, जिस प्रकार भगवान का क्या नाम है, भक्तवत्सल, भक्तों की, भक्तों को में सबसे प्रिय है वो, भक्तों को प्रिय है। वत्स का अर्थ क्या है, वासुरु, गाय वासुरु नका विसुरु। तो गाय का जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं, बालक बछड़ा। तो ऐसा बछड़ा जब पैदा होता है तो जो किसान भी है वो भी उसके नजदीक नहीं जाता, क्योंकि उसके शरीर में इतनी गंदगी होती है, इतने प्रकार के द्रव्य होते हैं चिपके चिपके हैं, तो किसान भी उसको साफ नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं, उसकी मां ही उस बछड़े को क्या करते है? अपने आगे लेती है और अपनी जीवा से क्या करती है, वो शरीर का लेप निकाल देती है। तो उसमें क्या होता है धोखा कि कभी कभी उससे गाय मर भी सकती है, मां मर भी सकती है, लेकिन वो धोखा लेकर वो अपने बछड़े को साफ करती है। उसी प्रकार भगवान का नाम क्या है, भक्त वत्सल, वो भी अपने बछड़े को, अपने जीवों को अपने शरण में लेकर एक गाय जिस प्रकार उनके गंदगी को निकालती है शरीर के, उस प्रकार भगवान जो भी उनके शरण में आता है उनके पापों को उस प्रकार गंदगी को निकाल देते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना ही कलयुग में एकमात्र क्या है, आधार है, कलयुग नाम मात्र आधार। इसलिए हम देखते हैं अभी कि किस प्रकार ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि 99% हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है वो हमारे हरि नाम पे निर्भर है। कितनी तीव्रता से कितने ध्यान पूर्वक आप जप कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हम इसका महत्व क्या है अलग अलग शास्त्रों में। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है आध्यात्म में, अमल पुराण। अमल का इसका मतलब क्या है, जिसमें कोई मल नहीं, कोई गंदगी नहीं, निर्मच्छराणाम सताम। ऐसे साधुओं के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो क्या है, अमल पुराण भागवतम। उसका अंतिम श्लोक क्या है, उस अंतिम श्लोक में भी यही बताया है, क्योंकि भागवतम और कुछ नहीं, शुरुआत मध्य और अंत सब कुछ हरिनाम का गुणगान ही है। हाँ, भागवतम इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ होली नेम। हर एक श्लोक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भगवान का नाम ही सब कुछ है। हर एक श्लोक का अर्थ अभी निकालेंगे आप तो हर एक श्लोक भगवान के नाम के बारे में बताता है, विशेष करके पहले स्कंद में, छठे स्कंद में और बारहवें। हाँ, ये सैंडविच है भागवतम, पहला छठा और बारहवा, उसमें हर एक इन अध्यायों में भागवत में क्या किया है, हरि नाम की महिमा बताते हैं। ऐसे पहले स्कंद में आपन ही संस्मृति घोराम, जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र उपाय है इस संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, वो है भगवान का नाम, जिसको भय के मूर्तिमंत स्वरूप यमराज भी घबराते हैं, इस प्रकार वर्णन किया है। और छठे अध्याय में देखते हैं, छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है, जिसमें एक जो वुमन हंटर था वो हरे कृष्ण चंटर कैसे बन गया, ये बताया गया है। जो वुमन हंटर मीन्स दो स्त्री लंपट था, जो अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या के साथ, जिसने 10 बच्चे पैदा किए, 90 साल में 10वां बच्चा पैदा हुआ, ये रिकॉर्ड है। तो ऐसा अजामिल भी जो स्त्री लंपट था, जो वुमन हंटर था, वो चांटर कैसे बन गया और उसका उद्धार कैसे हो गया। और अंतिम श्लोक क्या है भागवतम का, जिसके बाद वेदव्यास जी ने एक भी श्लोक नहीं लिखा, एक भी ग्रंथ की रचना की नहीं की, वेद पुराण शास्त्र जो भी है उसका परमोच्च परम सिद्धि क्या है, ये श्लोक। तो श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। तो श्लोक बताए, ऐसे भगवान के नाम को मैं नमस्कार करता हूं जो नमस्कार करने से मात्र सब पापों का नाश होता है। ऐसे कभी होता है कि नमस्कार से चमत्कार होता है, नहीं, लेकिन ये चमत्कार हरि नाम कर सकता है। ऐसे भगवान के नाम को भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है उसको नमस्कार भी करने से क्या होता है, सारे पापों का नाश होता है, इतनी शक्ति है उसमें। तो इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन यस्य पाप प्रणशनम, प्रणामो दुख शमनस, दुखों का शमन होता है, तम नमामि हरि परम। और गीता में जैसे हमने कहा सर्वधर्मान परित्यज, वो भी अंतिम क्या है, आज्ञा है भगवान की। वेद व्यास का अंतिम श्लोक है वो जो भगवान के क्या है, लिखित अवतार है, और खुद भगवान गीता में अंतिम आदेश दे रहे कि मेरी शरण में आ जाओ। और शरण आने का मतलब है भगवान के नाम का आश्रय लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि भागवतम जब लिखा, बाकी भागवतम के पहले जो भी ग्रंथ लिखे, वेद शास्त्र पुराण जितने भी थे, जो भी लिखे उनसे वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली, फिर भी वो परेशान थे, उनके मन में हृदय में कुछ कमी महसूस हो रही थी, इसलिए वो परेशान थे, उस परेशानी में वो अपने गुरु महाराज पे ध्यान करने लगे। उसी जगह नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि आपके इस परेशानी का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो इतने शास्त्र लिख के भी, क्योंकि आपने सिर्फ क्या दिया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दिया है इन सारे ग्रंथों में, जिसके बलबूते पे कलयुग के लोग पूरा फायदा उठेंगे और ज्यादा से ज्यादा पाप करेंगे। तो उनको पाप करने के लिए आप प्रवृत्त कर रहे हैं, तो उनको भगवान के शरण में कैसे जाना है, भगवान के नाम की कैसे शरण लेना है, इसके बारे में कुछ आप लिखिए। भगवान का गुणगान के बारे में, भगवान के भक्तों के गुणगान के बारे में, जिन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में अलग अलग संकटों में विपदा में भगवान के चरणों का आश्रय लिया, भगवान के नाम का आश्रय लिया, भक्तों का आश्रय लिया और किस प्रकार अपने जीवन की नैया पार की, इसके बारे में लिखिए, जिससे वो प्रेरित होंगे भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए, भक्तों का आश्रय लेने के लिए। तो ऐसा जो गुणगान में है भक्तों के और भगवान के, ऐसा ग्रंथ लिखेंगे तो ही आपके मन को, आपके आत्मा को शांति मिलेगी। तब जाकर उन्होंने इस अमल पुराण की निर्माण की। इसलिए हम भी देखते हैं, हम भी उदास है, दुखी है, हाँ इतने सारे हम कोशिश कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों जन्म से सुखी बनने के, लेकिन हम भी सुखी नहीं बन रहे। जब तक हम भी भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान के चरणों का शरण नहीं लेते, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, भक्तों के संग में नहीं आते, तब तक हम उसी प्रकार कितना भी हम कोशिश करें, कितने भी प्रकार के कार्य करें, लेकिन वो हमको सुखी नहीं बना सकते। क्योंकि आत्मा को एक ही चीज सुखी बना सकती है इस भौतिक जगत में, जो क्या है, नाश्वर है। ऐसे नाश्वर भौतिक जगत में एक ही चीज शाश्वत है, वो है भगवान का नाम। क्योंकि इस भौतिक जगत में दो ही चीज शाश्वत है, एक है जीवात्मा और दूसरा है भगवान का नाम। जब तक जीवात्मा दूसरे शाश्वत चीज का हरिनाम का आश्रय नहीं लेता, तब तक वो सुखी नहीं बनता। इसलिए भागवत में क्या कहा है, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। भगवान आत्मा को शांति कभी मिलेगी, जब वो भगवान के अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति, यानी भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, हरे कृष्ण महामंत्र से। तो ध्यान पूर्वक जप करके, स्पष्ट रूप से उच्चारण करके, उसको ध्यान पूर्वक सुनने से मात्र क्या होते है, हमें भगवान की अहेतु की अप्रत्यता भक्ति का अवसर मिलता है। अहेतु की मीन्स उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज कोई भी कार्य करे, अगर उसमें हेतु है तो निश्चित रूप से उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि अगर हेतु सफल नहीं होगा तो हम काम छोड़ देंगे वो। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है, अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं, इसलिए वो अप्रत्यता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। जिस प्रकार गंगा का बहाव होता है किसी बिना रुकावट के अंत में सागर को जाके मिलता है, उस प्रकार हमें जानना चाहिए कि हमारी भक्ति होनी चाहिए अहेतु की अप्रत्यता। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ है, सार है गीता और भागवत, और उसमें अंतिम आज्ञा है, अंतिम श्लोक है भगवान के नाम का आश्रय लेना। इससे बड़ा प्रूफ हमें और कोई नहीं चाहिए कि भगवान के नाम का आश्रय क्यों लेना चाहिए। और विशेष करके भगवान कलयुग में नाम के रूप में आए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो हम देखें कि इस श्लोक में बार बार क्यों बताया है, एक बार बोलने से काम नहीं चलता क्या उनको, हाँ जब किताब छापना तो पूरा लाइन भर के देना था, तो जगह बहुत था, इसलिए उन्होंने दो दो बार, हाँ तीन तीन बार वो शब्द बोला है। नहीं, उसके पीछे वो उद्देश्य है, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। तीन बार हरे नाम क्यों बोला है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और बाद में नास्ते व नास्ते व नास्ते व, तो तीन बार हरे नाम क्यों बोला है, क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट में बहुत भी आवाज, जैसे अभी चल रहा था प्रवचन के पहले, उस प्रकार आवाज चलता है तो क्या करते हैं, जज हाथ में हथौड़ा लेके अपने टेबल पे मारते हैं और क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो सारा कोर्ट शांत हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग में जो दंगा फसाद चल रहा है अनर्थों का, उसको अगर शांत करना है तो भगवान शास्त्र का हथौड़ा लेके हमारे सिर पे मार रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा नाचना पड़ेगा नाचना पड़ेगा, नाचते वो नाचते वो नाचते वो, गणपति में नाचना पड़ेगा, काली के सामने भी नाचना पड़ेगा, हाँ शादी में नाचना पड़ेगा, लेकिन भगवान के लिए नहीं नाचेंगे। तो इसलिए तीन बार कहा गए। तो प्रभुपाद भी इसका स्पष्टीकरण करते हैं, ये हरे नाम तीन बार क्यों है। तो हरे नाम पहला जो हरे नाम है वो कहते हैं ना तो ज्ञान कांड से, दूसरा हरे नाम है ना तो ध्यान कांड से, और तीसरा हरे नाम है ना तो कर्म कांड से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हरे नाम, भगवान का नाम ही आपको भगवान की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण देते हैं कि हरे नाम तीन बार क्यों है, क्योंकि पहला हरे नाम है वो कहते हैं कि उसको सुनो ध्यान पूर्वक, दूसरा हरे नाम क्या है कि उसको समझो, और तीसरा हरे नाम क्या है उसका साक्षात्कार करो। सुनो समझो और साक्षात्कार करो, इसलिए तीन बार बोला गया है। तो यह प्रश्न उठता है कि कलयुग में हरि नाम ही क्यों है और दूसरा कोई उपाय नहीं क्या। लेकिन यही सवाल सृष्टि से पहले भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक है नारद मुनि, उन्होंने अपने पिता को ब्रह्मा जी को पूछा। जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, सत्य होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा और उसके बाद कलयुग आएगा, लेकिन कलयुग के लोगों के बारे में क्या सोचा है आपने, उनका उद्धार कैसे होगा, वो फिर से भगवान के भक्ति में कैसे लगेंगे, उनके लिए क्या मौका है भगवत प्राप्ति करने का। तो ये प्रश्न सुनकर बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि पहली बार किसी जीव ने उनको जन कल्याण हेतु प्रश्न पूछा। जो भी प्रश्न पूछते हो अपने खुद के लिए पूछते हैं हम, लेकिन यहां पे नारद जी बद्ध जीवों के लिए, विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा। तो खुश होकर जो ब्रह्मा जी बोलते इति षोडशक नाम नाम, वो कहते 16 अक्षर वाला ही महामंत्र इनका उद्धार करने के लिए काफी है। तो यहां पे कह रहे इति षोडशक नाम नाम, षोडशक नाम का मतलब क्या है, 16 अक्षर वाला ही, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग में बहुत मिलावट होगी, इसलिए 16 अक्षर उन्होंने पहले से दिए ताकि उसको कोई कम ना करे ना ज्यादा करे, ना कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। इसलिए वो बोल रहे इति षोडशक नाम नाम, 16 अक्षर वाला ही महामंत्र उनका उद्धार कर सकता है, क्योंकि कलयुग में मिलावट होगी, भेसल होगी, क्योंकि कलयुग में अगर कोई मरना भी चाहता है टिक 20 पीकर तो मर नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी मिलावट होगी टिक 20 में। इसलिए कलयुग में शुद्ध घी क्या शुद्ध डालडा भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे मिलावट के युग में निश्चित रूप से ये बाबा वो आई आकर क्या करेगी, हरे कृष्ण महामंत्र में गड़बड़ कर देगी, इसलिए पहले से उसको कॉम्पैक्ट करके रखा है 16 अक्षर वाला ही महामंत्र, ताकि कोई कम ना करे ना कोई ज्यादा करे उसमें। तो नारद पूछते बस और कोई चीज करने की जरूरत नहीं, और कोई उपाय, तो आगे बोलते हैं ना तो परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं, अगर ये उपाय नहीं लेंगे तो आपको अपाय हो जाएगा, आपको धोखा हो जाएगा, धोखा सहन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं, और कोई चीज करने की जरूरत नहीं। तो आगे नारद जी पूछते लेकिन इतने सारे वेद है, ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें और कोई ना कोई तो मार्ग रहेगा, थोड़ा सर्च मोड में जाइए देखिए छानकर कि और कोई उपाय होगा, इतने सारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है। तो ब्रह्मा जी कहते सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे सर्च मोड में चला गया हूं मैं, सब मैं ढूंढ कर निकाला है, सर्व वेदेषु दृश्यते, और ये सारे साधु का वेदों का सार है। तो नारद आगे पूछते क्या कलयुग में यही मात्र यज्ञ है, तो बोलते यही मात्र यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कहते ब्रह्मा जी यही मात्र संकीर्तन यज्ञ है, जिसमें जो यज्ञ में हरिनाम की अग्नि होगी, हरिनाम क्या होगा, एक अग्नि के समान होता, यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं हम तो उसमें अग्नि होनी चाहिए, वो यज्ञ क्या अग्नि क्या है, हरिनाम। और आगे कहते जो हम दो हाथ ऊपर उठाते हैं इस यज्ञ में वो अग्नि की ज्वाला होगी, इसलिए जब हरिनाम करते तो दोनों हाथ ऊपर उठाने चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है जो भी ऊपर के लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, स्वर्ग लोग में, बाकी सभी लोगों में। इसलिए कीर्तन में क्या करना चाहिए, हाथ ऊपर करना चाहिए, और भजन जब गाते बैठकर तो ताली बजाना चाहिए। लेकिन हम लोगों को बोलते ताली बजा तो बजाते नहीं, हाँ कितना भी समझाओ उनको, कितने भी कारण बताओ, लेकिन उसी हाथ में अगर गाय छाप जर्दा देंगे तो निरंतर बजाते जाएंगे रुकेंगे नहीं। ये कलयुग के नमूने हैं, क्योंकि ताली बजाने से क्या होता है, अपने पाप रूपी शरीर में, शरीर रूपी वृक्ष है उसमें जो पाप के पंछी बैठे वो उड़ जाएंगे। जिस प्रकार किसी पेड़ के नीचे जाकर आप ताली बजाएंगे तो क्या होगा, सभी पंछी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर एक पाप रूपी वृक्ष है जिसमें पाप रूपी पंछी बैठे हुए, उनको भगाना है तो कीर्तन में ताली बजाना होगा। तो यज्ञ में अग्नि क्या होगी, हरिनाम, दो ऊपर हुए हाथ उठाए हुए हाथ क्या होंगे, अग्नि की ज्वाला यज्ञ की। और यज्ञ कुंड क्या होगा, ये दो कान, ये दो कानों से यज्ञ कुंड में हम डाल सकते हैं। और जो जीवा है वो यज्ञ का चम्मच होगा, यज्ञ के लिए चम्मच करते हैं स्वाहा करके, उस प्रकार चम्मच क्या होगा, ये जीवा। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो चेतना है, हमारी जो भावना है, उस यज्ञ की आहुति होगी। इसलिए ये परिपूर्ण यज्ञ है जिसमें हरेक अंग का शुद्धिकरण होगा, और शुद्धिकरण के बाद ही हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसलिए हरिनाम ही इस कलयुग में हरेक जीव को शुद्ध कर सकता है, और जीवन का जो यज्ञ है वो परिपूर्ण कर सकता है, उसमें परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निस्तार। सारे जगत का निस्तार कर सकता है, उद्धार कर सकता है केवल हरिनाम। नाम बिना कली काले आर ना ही धर्म, इसलिए कृष्ण कहते सर्व धर्मान परित्यज्य। नाम बिना आर ना ही, नाम बिना कली काले आर ना ही धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, यही हरे कृष्ण महामंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आगे प्रश्न हो सकता है कि कलयुग में हरिनाम ही क्यों काम कर सकता है, बाकी मंत्र क्यों नहीं काम कर सकते, बाकी जो मार्ग है वो क्यों नहीं काम कर सकते, कर्म कांड, ध्यान कांड, ज्ञान कांड। क्योंकि शास्त्र बताए बाकी जो कांड है, ध्यान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, वो आत्मा का हत्याकांड करते हैं, और केवल आनंद कांड कौन दे सकता है, हरे कृष्ण महामंत्रा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो कैसे जाने कि हरिनाम ही कलयुग में काम करता है, जैसे उदाहरण बताते हमारे आचार्य, वर्तमान आचार्य, बहुत सुंदर उदाहरण है धार पुरुष हुए। जैसे गांव में शहर में दंगा फसाद फैलती है, बहुत आतंक फैलता है, तो क्या करते हैं, पहले कौन आता है, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद क्या दिखाते हो, लाठी दिखाते हैं, लाठी से लोग भागेंगे नहीं तो लाठी मार, हाँ वास्तव में शुरू करते पैरों पे लाठी मारना शुरू करते ताकि लोग भागे नहीं। वो भी करके अगर लोग भागते नहीं, आतंकवादी जो दंगा फैला रहे, तो क्या करते हैं, अश्रुधार छोड़ते हैं ताकि उनके आंखों में दिखाई ना पड़े। वो करने के बावजूद भी अगर लोग भागते नहीं तो क्या करते हैं, अपना AK-47 HK-108 ने AK-47 निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं और दिखाते हैं, पहला इसको देखते हो आप पहचानते हो क्या है, तो उससे भी लोग नहीं भागते तो हवा में गोली चलाते पहले प्रैक्टिस के लिए और उतना करने के बावजूद भी अगर लोग भागते नहीं तो क्या करते हैं, सचमुच वो प्रैक्टिस जो है वो नेट प्रैक्टिस जो है वो एक्चुअली शुरू कर देते हैं, लोगों को गोली मारना, शूट एट साइड बोलते हैं उसको। इतना करने के बावजूद भी लोग कभी कभी पीछे हटते नहीं, तो क्या होता है, अंत में कौन आते हैं, मिलिट्री। उसी प्रकार कलयुग में हमारे हृदय में दंगा फसाद चल रहा है, 6 आतंकवादी छुपे हुए, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, करोड़ों जन्मों से आतंक फैला रहे हैं। तो ये ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड किसके समान है, पुलिस लाठी दिखाना, अश्रुधार, बंदूक निकालना, उससे भी वो भागेगा नहीं। जब तक हम बुलाते नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की है मिलिट्री आर्मी, उसको बुलाते नहीं हरिनाम संकीर्तन को, तब तक हमारे जीवन में शांति का नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही मिलिट्री है इस कलयुग में जो हमारे जीवन में दंगा फसाद फैला रही है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम सुबह बता रहे थे, दूसरा उदाहरण हमारे आचार्य देते कि कलयुग में हरिनाम ही क्यों काम करता है, क्योंकि कलयुग में इतना क्लेश है, छोटी छोटी बातों में क्या होता है, झगड़ा होता है, मारामारी होती है। जैसे पेपर में पढ़ते, मां ने बेटे को चाय नहीं दी इसलिए बेटे ने मां को खत्म कर दिया। दूसरी न्यूज होती है किसी व्यक्ति ने 7 रुपए 15 पैसा नहीं दिया उसका, हाँ इसलिए उसका खून कर दिया। तो छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े होते हैं, ये कलह का युग है, झगड़ों का युग है। तो अग्नि भड़क रही है क्योंकि ऑलरेडी हमारे आतंकवादी आग लगा के चुके हैं सारे हमारे शरीर में, हाँ। तो ऐसे समय हमारा सारा शरीर जल रहा है अग्नि में, संसार दावा नलली लुढ़का, ये दावाग्नि है, उसको अगर बुझाना है तो छोटा बकेट, बड़ा बैरल या अग्निशामक दल कोल्हापुर, हाँ वो भी उसको बुझा नहीं सकता। जैसे जंगल में आग लगती है किसके कारण लगती है, कोई आग लगाने नहीं जाता, उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई आग लगाते नहीं, खुद हम आग लगा के लेते हैं क्योंकि मतभेद के कारण। तो ऐसी जो दावाग्नि है, फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग है, वो कैसे होती है, हवा की जोर, हाँ जब हवा जोरदार चलती है तो दो वृक्षों के घर्षण से क्या होते है, फ्रिक्शन से आग लगती है। उसी प्रकार दो व्यक्ति जब एक साथ आते हैं तो उनके मतभेद से आग लगती है उनके जीवन में। तो ऐसे अग्नि को जो जंगल में लगती है उसको बकेट के पानी, बैरल का पानी या फायर ब्रिगेड का पानी बुझा नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा से घमासान वर्षा नहीं होती तब तक वो अग्नि नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब तक हरिनाम की वर्षा नहीं होती जो गुरु के माध्यम में मिलती है, क्योंकि वर्षा कैसे होती है, बादल के रूप में, बादल वो वर्षा को बरसाते हैं, तो बादल क्या है, सदगुरु। जो बादल कैसे बनते हैं, भगवान की कृपा से, हाँ जो कृष्ण है करुणा सिंधु, सिंधु का मतलब है सागर, सागर से बादल बनते हैं, उनकी कृपा से बादल, हाँ वो पानी लेकर बद्धजों पे छिड़काते हैं हरिनाम के रूप में, तभी जाकर उनके जीवन में ये अग्नि शांत हो सकती है। बाकी कोई मंत्र तंत्र ज्ञान कांड ध्यान कांड उस आग को बुझा नहीं सकता, बल्कि वो बढ़ा सकता है ज्यादा से ज्यादा। वो तेल के समान है और हरिनाम किसके समान है, एक वर्षा के समान है। तेल ज्यादा अग्नि भड़कता है, भड़काता है, लेकिन पानी क्या करता है, उसको बुझाता है। इसलिए एकमात्र इस कलयुग में जो उपाय है इस अग्नि को शांत करने का, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भागवत में पहले स्कंद में सुखदेव महाराज बता रहे परिषद को कि कलयुग में क्यों कठिन है इतना, कलयुग इतना कठिन क्यों है, घोर कलयुग बोलते हैं हम जिसकी शुरुआत भी नहीं है, उसके पहले हम उसका प्रचार कर रहे हैं, घोर कलयुग आने वाला है। तो ऐसे कलयुग के बारे में बताते हैं कि कितना कठिन है, लेकिन उसमें भी एक आशा का किरण है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। वो कहते हे राजन, हे राजा, ये जो कलयुग है ये दोषों से भरा है, दोषों का सागर है। तो प्रश्न उठता है दोषों का सागर कहां से आया, सत्ययुग में नहीं था, त्रेतायुग में नहीं था, दापुर में, कलयुग में अचानक से कैसे आ गया, क्या जमीन से ऊपर आ गया, नहीं। दोषों का सागर कैसे बना कि हम एक दोष देखते हैं एक आदमी में, उसको 10 लोगों को बताते हैं, वो 10 लोग 100 लोगों को, वो 100 लोग 1000 लोगों को, वो 1000 लोग 10000 लोगों को, बूंद बूंद से बने सागर। इस प्रकार ये दोषों का सागर बन चुका है, लेकिन ऐसे दोषों के सागर में भी एकमात्र सबसे अच्छा गुण है। कलेर दोषी निदर्जन अस्ति एक महान गुण, वो गुण है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग प्रमुलेत। इसलिए शास्त्र आचार्य गुरु साधु शास्त्र क्या कहते हैं, बाकी ढूंढने में, मार्ग ढूंढने में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं इस कलयुग में, और है ही नहीं। जिसने निर्माण किया है वो बता रहा है आपको कलयुग कैसा होगा, एक ही है उसके आप शरण में जाओ, उसका आश्रय ले लो, और कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, उतना समय बर्बाद मत करो। अस्ति एक महान गुना, वह है भगवान का नाम। तो कलयुग के सारे दोष एक पलड़े में भी रखे तराजू में, और दूसरे पलड़े में भगवान का नाम रखे, तो हमेशा भगवान का नाम ऊपर रहेगा, भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारे अवतारों की शक्ति भगवान ने अपने नाम में लगाई है, इससे कलयुग के दोष उसके सामने कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, पलड़ा क्यों भारी रहेगा? क्योंकि भगवान खुद नाम के रूप में आते हैं, भगवान से और कोई भारी हो सकता है नहीं, कलयुग कुछ भी नहीं उनके सामने, कलि काले नाम रूप अवतार। इसलिए हमेशा भगवान के नाम का पलड़ा भारी रहेगा, भले कितना भी दोष कितने भी दुर्गुण रहे इस कलयुग में बढ़ते जाए, फिर भी अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से इस कलयुग से बच सकते हैं। इसलिए कलयुग में एकमात्र उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि कलयुग में अपना मन इतना दूषित है, इतना गंदा है कि उसको बताने की भी कभी कभी शर्म आती है। जैसे बताया जाता है मन को, किसी उपमा दी गई है एक समुन्द्र की, सागर की। हाँ, ऊपर ऊपर से लगता है बहुत ही शांत है सागर, उस प्रकार लगता है मन बहुत ही शांत है, बहुत ही हमें सहायक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अंदर क्या है, हलचल मच रही है। ऐसे लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठेरे में गंगा, लेकिन इस गंगा में कितना दंगा चल रहा है मालूम नहीं, अंदर कितना दंगा फसाद चल रहा है मन में वो मालूम नहीं। हाँ, तो हम बता सकते हैं उनको कि समुद्र जैसा होता है, उसके सबसे नीचे जो होता है उसमें कितनी गंदगी होती है, कितनी बदबू आती है, वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन इतनी गंदगी होने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, उस गंदगी का जब बढ़ाव होता है तो वो फर्मेंटेशन होता है उसका। हाँ, जैसे दही का होता है, उसमें बुदबुदे आते हैं और वो बुदबुदे कभी कभी पानी के ऊपर आते हैं। लेकिन मन रूपी जो हमारा समुद्र है उसमें हर क्षण बुदबुदे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, समुद्र से भी ज्यादा गंदगी हमारे मन में है। समुद्र में कभी कभी बुदबुदे आते हैं, बबल्स आते हैं जब गंदगी बढ़ती है तो। लेकिन हमारा मन रूपी जो सागर है उसमें कितनी गंदगी होगी विचार कर सकते हैं आप। हर क्षण बुरे विचारों के बुदबुदे ऊपर आते हैं, इतनी गंदगी है हमारे मन में। तो ऐसे मन को साफ करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन को टॉयलेट की उपमा दी गई है। हाँ, जो पेशाब होता है घर, या जो जहां पे हमें विष्ठा त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, वो टॉयलेट की उपमा दी गई है। देखो शास्त्र कितना कठोर है मन के बारे में, या इस दुर्गंध के बारे में कलयुग के। जो टॉयलेट हमने समझो, सोचिए एक टॉयलेट है जो कई सालों से साफ नहीं किया और उसको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितनी गंदगी उसकी होगी, उसमें कितनी बदबू आती होगी। लेकिन हमारा जो मन है, सिर्फ सालों से नहीं करोड़ों सालों से हम उस टॉयलेट को साफ नहीं किए, क्योंकि उसमें फ्लश नहीं, पानी डालने का जो बटन होता है उसको फ्लश बोलते हैं, दबाते ही वो गायब हो जाता है, तो उसको फ्लश बोलते हैं, तो फ्लश बटन ही नहीं उसको। इसलिए हमारे मन में गंदगी बढ़ती जा रही है, और ये गंदगी और भी बढ़ा रहे हम जब हम भगवान के बिना, भगवान से संबंधित जो नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं, विषय वस्तु के बारे में। तब जब हम चर्चा करते तो हम क्या करें, मोबाइल उठा के फोन कर रहे हैं कि और एक ट्रक लोड भेज दो मलमूत्र का, इस प्रकार। और हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी दूसरों को बता रहे हैं, अगर भगवान से संबंधित नहीं तो किसके समान है, एक ट्रक लोड ऑर्डर करने के समान है, और वो अपने ही टॉयलेट में डंप करने के समान है। तो ऐसा दिन ब दिन हमारा टॉयलेट गंदा होते जा रहा है, बदबू आ रही है। तो ये देखकर खुद भगवान आते हैं सिखाने के लिए बद्ध जीवों को कि टॉयलेट कैसे साफ करना है। और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में विशेष करके आते हैं वो बताने के लिए कि ये फ्लश कैसे करना है, इस टॉयलेट को साफ कैसे करना है, ये बताने के लिए आते हैं। और वो खुद लेके आते हैं फ्लश उसमें बिठाने के लिए, और वो फ्लश क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए हमेशा हमारा मन क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। इसलिए कलयुग में एक ही युग धर्म है, वो है हरिनाम संकीर्तन। तो युग धर्म का पालन करेंगे तो युग धर्म हमारा पालन करेगा। बहुत सादा क्या है, गणित है। कैसे हम कलयुग के प्रभाव से बचे, सिर्फ युग धर्म का पालन करना है तो युग धर्म हमारा पालन करेगा, देखभाल करेगा। अगर सही तरीके से युग धर्म का पालन करेंगे तो तीन फायदे होंगे। कोई भी धर्म लीजिए, अगर उसे ये तीन फायदे हो रहे तो आप निश्चित रूप से उसका स्वीकार कीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ हरे कृष्ण में आइए। अगर ऐसा कोई भी धर्म है कलयुग में जिससे आपको ये तीन फायदे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर जाइए, लेकिन ये नहीं है इसलिए आपको यहीं पर आना होगा। तो तीन फायदे क्या है? पहला फायदा है सभी कलमोशों का, त्रितपों का नाश होता है, धुलाई होती है। त्रितप क्या है? आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। और तीन गुणों से हम जो कलमश मिलते हैं वो है आदिभौतिक का मतलब जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, जीवात्मा है जिनसे हमें तकलीफ मिलते हैं। घर में बीवी है, बच्चे है, वो काटते रहते हैं, मच्छर काटते रहते हैं, ऑफिस में बॉस काटते रहता है, सब क्या है? आदि भौतिक। आदि देवी का मतलब जो देवी देवताओं के कोप से ज्यादा वर्षा, ज्यादा धूप, जो भी है हाँ तकलीफ होती है, हमारे हद के बाहर है, हमारे लिमिट के बाहर है, हमारे कंट्रोल के बाहर, वो है आदि देविक। और आध्यात्मिक यानी खुद का मन और शरीर से मिलने वाली तकलीफें, तो ये काफी है। क्योंकि कोई ना कोई एक ताप से हम परेशान है, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं विशेषकर कलयुग में जिसमें हम एक भी ताप से परेशान नहीं। इसलिए हमारा नाम क्या है? परेशान सिंह। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, तीन तापों को धोने के लिए, तीन कलमशों को धोने के लिए एक ही टिकिया है। और वो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टम के पहले श्लोक में बता रहे, श्रेय कैरव चंद्रिका, चंद्रिका साबन वापरिए। जो चंद्रिका साबन आपके सारे कलमशों को, पापों को धो डालता है। इसलिए कलयुग में एक ही टिकिया काम करती है, हरे कृष्णा टिकिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो पहला फायदा क्या है? तीन तपों से मुक्ति। तो यही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ नहीं कि भगवान में लीन होना, हाँ भगवान में हम लीन नहीं हो सकते। जैसा बच्चा पैदा हुआ है और 20 साल के बाद वो कहता है कि मां मुझे फिर से आपके घर में मिल जाना है, ये संभव है क्या? नहीं। उसी प्रकार हम भगवान के क्या है, सनातन काल के लिए अंश है और अंश रहेंगे। भगवान में लीन होना यानी भगवान की इच्छा से हमारी इच्छा को एक करना, उसे भगवान में लीन होना कहते हैं। तो पहला फायदा क्या है? तीन तपों से, तीन कलमोश से हमारी मुक्ति होती है। दूसरा फायदा, जीवात्मा को उसकी सही और वास्तविक स्थिति में स्थित कर देता है। कोई भी धर्म है अगर उस जीवात्मा को उसके असली पहचान करके दे रहा है, उसको उसके स्थिति में स्थित करके दे रहा है, तो सही धर्म है। और जीवात्मा का असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करते तो पता चलता है कि हम भगवान के नित्यदास है। तो ये फायदा है इस कलयुग में युग धर्म का पालन। तीसरा फायदा क्या है? आत्मा की पूरी तरह संतुष्टि कर देता है जब हम बिना कोई हेतु भगवान का नाम लेते हैं। पूरी संतुष्टि हम देखते हैं, करोड़ों करोड़ जन्म से हम कोशिश कर रहे हैं सुखी बनने का, लेकिन सुख सुख करते हम सुख जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हरेक कार्य में हमारा हेतु है। और जब भक्ति में भी आते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं हम भगवान से। जैसे हम सुबह बता रहे थे, बाकी देवी देवता है, यहां तक कि भगवान की भी, कभी कभी शुरुआत में जब हम नव सीखे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि भगवान को क्या मांगना है। कहीं के लोग होते शनिवार को मारुति के पास जाते, कहते कि मेरी शादी करवा दो। बेचारा वो ब्रह्मचर्य है। उसके पास जाके कहते कि ए शादी करवाओ। तो कलयुग के नमूने को मालूम नहीं कि किसके पास जाके क्या मांगना है। जैसे हम देवी देवता के पास भी जाते हैं और क्या मांगते हैं? रोटी कपड़ा और मकान। तो भगवान के पास भी जब आते हैं और ये मांगते हैं तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा। जैसे सोचिए आप एक बच्चे के पिता है और हर रोज सुबह उठकर बच्चा आपका पैंट पकड़ के पूछता है, पापा पापा आज खाने को मिलेगा क्या, पहनने को कपड़ा मिलेगा क्या। तो तो वो सहन करते हैं। फिर से शाम को आते पूछते पापा पापा आज तो मिल गया, कल मिलेगा क्या खाने को, हा? रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा क्या? तो अपने सिर को हाथ लगा के कहा पिता क्या कहेगा, किस मुहूर्त पे तुझे पैदा किया? जिसको पैदा किया, जिसने पैदा किया उस पर ही तुझे विश्वास नहीं, तेरे तेरे जीवन का अर्थ क्या है? उसी प्रकार भगवान के पास भी जाते हैं और यही मांगते हैं हम, वो तो लिख के रखा है आपके प्रारब्ध के अनुसार, इसलिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अगर हेतु नहीं तो क्या होगा, आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। इसलिए सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यहता ययात्मा सुप्रसिद्धि, तभी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन इस कलयुग में शांति का नामो निशा नहीं, भले आप शांति अपार्टमेंट रह रहे फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। वहां बोर्ड क्या रहेगा, शांति अपार्टमेंट अंडर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। उस प्रकार हमारा अपार्टमेंट जीवन इस प्रकार है, शांति का नामो निशान है। इसलिए कहा गया कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। कृते यध्यायतो का मतलब क्या है, कृते का मतलब सत्ययुग। सत्ययुग में क्या होता, ध्यान करना, यही युग धर्म था। और कितने साल तक करते थे, 60,000 साल तक। कई लोगों को चक्कर आ जाएगा 60,000 सुन के, 60 सेकंड हम 60 मिनट बैठ नहीं सकते जब करने के लिए, ध्यान नहीं कर सकते तो 60,000 कैसे मुमकिन है। लेकिन उनकी आयु थी 1,00,000, इसलिए वो कर सकते थे, 60% ध्यान में जाता था उनका। लेकिन 60,000 साल तपस्या करके भी, ध्यान करके भी कोई गारंटी नहीं थी कि भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या की, लेकिन फल क्या मिला, घुंघरू की आवाज। मेनका की घुंघरू की आवाज सुनकर उनकी घंटी बज गई। ऐसे खेल में होता ना स्टॉप बेल, तो तुरंत उनका खेल बंद हो गया। मेनका की आवाज बेल सुनकर उनकी खेल बंद हो गया ध्यान का। और यह देखकर सोबारी मुनि चौकन्ने हो गए, वो सोचने लगे कि विश्वामित्र तो जमीन पर फेल हो गया, मैं तो पानी के अंदर जाऊंगा। इसलिए पानी के अंदर गए ध्यान करने के लिए। उन्होंने भी 60,000 साल तपस्या की, लेकिन एक दिन देखा उन्होंने ध्याय तो विषाण पुंसा, दो मछलियां, एक स्त्री और एक पुरुष मादे मछली संभोग कर रही थी, तो उनकी जो काम वासना है इतनी प्रज्वलित हो गई, बाहर आके उन्होंने एक साथ 50 राजकन्याओं के साथ शादी की। इसलिए सोबारी भी बिल्कुल सोबर हो गए एकदम। पूरे शांत हो गए एकदम। तो ये फल है 60,000 साल का तपस्या का, ध्यान का। इसलिए कोई गारंटी नहीं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ये पॉलिसी नहीं देगी कि 60,000 साल के बाद आपको भगवान का दर्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा मेनका का दर्शन होगा। तो ध्यान विधि क्या है, सबसे धीमी विधि है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। दूसरा क्या है, किसके पास इतना समय है, हाय किसके पास 60 साल भी नहीं है। कोई 60 साल या 100 साल जीता है तो दूसरे दिन पेपर में क्या होता है, आता है नाम, इन्होंने सेंचुरी मार दी, रिकॉर्ड कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस प्रकार। और कोई गारंटी भी नहीं, किसी क्षण भी मन धोखा दे सकता है, क्योंकि मन मोजी माया का फौजी। तो उस मन को लेकर ध्यान करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कलयुग में मन क्या है, मन मोजी माया का फौजी है। माया का सबसे वफादार कुत्ता है, हमारी जो भी कमियां हैं वो माया को जाके बताएगा, एक सीआईडी एजेंट के समान। इसलिए ऐसे मन पे भरोसा रख के 60 मिनट 60 सेकंड भी हम तपस्या ध्यान नहीं कर सकते, तो 60,000 साल बाद की बात ही दूर है। दूसरा आता है त्रेताम यजतो मखे। त्रेता युग में क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञ, जितने बंबई शहर बड़ा है उतने बड़े बड़े शहरों के इतने बड़े यज्ञ करने होते थे, और उसमें शुद्ध सामग्री, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होता था। यज्ञ के लिए क्या चाहिए, शुद्ध सामग्री। लेकिन कलयुग में हमने क्या बताया, डालडा भी शुद्ध नहीं मिलता, शुद्ध घी कहां से मिलेगा। और मंत्रों का उच्चारण इतना शुद्ध होता था कि अग्नि को जलाने के लिए उनके पास लाइटर या माचिस नहीं होता था, और मंत्रों से अग्नि को आह्वान करते थे, इतने शुद्ध ब्राह्मण थे। लेकिन आजकल के जो ब्राह्मण है वो तो पार्ट टाइम ब्राह्मण है, और वो मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करते, कैसेट लगा के भागते रहते इधर उधर। कैसेट का जमाना है, और कैसेट लगाते लगाते वो खुद सेट बन रहे हैं, पैसे कमा के कैसेट से वो सेट बन रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि ब्राह्मण शुद्ध नहीं। और यज्ञ जब होता था तो यज्ञ पूरा बराबर हुआ कि नहीं, मंत्र उच्चारण बराबर हुआ कि नहीं, सब विधि बराबर हुआ कि नहीं, ये देखने के लिए एक बूढ़े बैल को या जानवर को, विशेष करके घोड़े को, अग्नि में क्या करते, आहुति देते। तो किसके लिए देते थे, ताकि उसको अगर मंत्र उच्चारण बराबर है, सब कुछ ठीक है यज्ञ में, तो उसको नया शरीर मिलता था, जवान शरीर, घोड़े का, बैल का, जो भी है। तो इतनी शक्ति थी उनके मंत्र उच्चारण में। लेकिन आजकल ये धोखा हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसने अगर यज्ञ भी किया, अंत में किसी को डाला, तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी उसको, हाँ, क्योंकि उसने ये हिंसा की समझकर। तो ऐसे यज्ञ में क्या है, बहुत ही धोखा है, विशेष करके मंत्र उच्चारण में। इसलिए सबसे बड़े जो कर्मकांडी है आज तक सृष्टि के निर्माण के बाद, वो है कौन है, शुक्राचार्य। वो खुद वामन देव से कह रहे हैं कि कितनी कमी है इस यज्ञ करने में, हर एक चीज में कमी है। इसलिए जब तक इस यज्ञ में हम भगवान के नाम को नहीं जोड़ते, किस कोई भी यज्ञ हो, जैसे हम देखते हैं कोई भी यज्ञ हो, कोई भी आरती हो, जिसमें भगवान का नाम नहीं जुड़ता तो परिपूर्ण नहीं। जिस प्रकार गणपति की आरती भी गाते हैं, अब गणपति आ रहा है, उसके बाद अंत में क्या कहते हैं हम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो हरेक यज्ञ में विष्णु को अर्पण करके ही वो यज्ञ सफल हो सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मंत्र तंत्र छिद्रम, वो कहते मंत्र में तंत्र में बहुत सारी कमियां होगी कलयुग में, कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। वृत्रासुर की कथा में वो बता रहे हैं कि जो त्वेष्टा थे, वो त्वेष्टा यज्ञ कर रहे थे किसके लिए, क्योंकि उसके पुत्र को इंद्र ने मारा था, जो इंद्र के लिए कर रहा था, क्योंकि इंद्र ने देखा उसका जो पुत्र था वो दोनों परिवार से संबंधित था, देवता और असुर से, इसलिए दोनों के कल्याण के लिए वो यज्ञ में आहुति दे रहा था स्वाहा करके। तो उसके जब इंद्र के समझ में आया तो उसने तुरंत कह के अपनी तलवार लेके उसका गला शरीर से अलग कर दिया। तो ये जब उसके पिता को पता चला, त्वेष्टा को, तो तुरंत उन्होंने गुस्से में आकर एक यज्ञ किया। उसका उद्देश्य क्या था कि इस यज्ञ से उनको इंद्र को मारने वाला शत्रु प्राप्त हो। लेकिन जब यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में उन्होंने मंत्र उच्चारण में थोड़ी गलती की, उनको दीर्घ बोलना, लघु बोलना था, लघु उच्चारण करना था, उन्होंने दीर्घ किया। जैसे उनको बोलना था इंद्र शत्रु स्वाहा करके बोलना था, उस जगह उन्होंने क्या किया, इंद्र शत्रु बोला। काफी फर्क नहीं है, लेकिन छोटा सा फर्क मंत्र उच्चारण में क्या हुआ, जो प्राप्त करना था उसका विपरीत उनको फल मिला। उनको प्राप्त करना था ऐसा राक्षस जो इंद्र को मारे, लेकिन वो ऐसा राक्षस उन्हें प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने जो लघु उच्चारण था इंद्र शत्रु, उसके जगह क्या बोला, इंद्र शत्रु बोला। तो उसका परिणाम क्या हुआ, ऐसा राक्षस पैदा हुआ जो इंद्र से मारा जाए, तो विपरीत परिणाम फायदा हुआ। तो यह देखकर शुक्राचार्य बता रहे हैं वामन देव को, भागवतम के 8वें स्कंद में 23वें अध्याय में 16वें श्लोक में, मंत्र तंत्र छिद्रम देश काल वस्तु था। वो कहते मंत्र में, तंत्र में, सामग्री में, हर एक में कोई ना कोई कमी होगी, तो ऐसे त्रुटियों से हम यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब त्रुटियां एक साथ भर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। सर्व करोति निश्चिद्रम, हर एक कमी पूरी हो सकती है जब हम इस यज्ञ में आपके नाम से आहुति देते हैं, आपके नाम का उच्चारण करते हैं, अनुसंकीर्तनम तव। वो कहते हैं जब आपका संकीर्तन होता, आपके नाम का उच्चारण होता, इस पद में जो भी कमी है, मंत्र में, तंत्र में, सामग्री में, ब्राह्मण में, जगह में, काल में, देश में, जो भी कमी है उसमें अपनी आप भर जाते हैं। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम।
इसलिए हमें सीखना है, जो फादर ऑफ ऑल कर्मकांडी है, फाउंडर आचार्य ऑफ ऑल कर्मकांडी हुए शुक्राचार्य, वो खुद भगवान को बता रहे कि ये यज्ञ कलयुग में असंभव है बिना आपके नाम के उच्चारण से। इसलिए ये भी सेकेंड चांस भी गया हमारा। फर्स्ट चांस क्या था? ध्यान करना. सेकेंड चांस यज्ञ करना. तीसरा चांस क्या है? द्वापरे परिचर्याम, अर्च विग्रह की सेवा. अर्चा का मतलब बहुत खर्चा, इसलिए बहुत कठिन है. और उसके लिए क्या चाहिए? व्यक्तिगत गुण हो चाहिए. भगवान का अगर करना है, श्रृंगार करना है, आरती करना है, उसके लिए ब्राह्मण के गुण होने चाहिए. उतना समय होना चाहिए, उतना ध्यान देना चाहिए, उतनी योग्यता होनी चाहिए. उसमें अपराध ज्यादा हो सकते हैं. जो फायदा मिलने वाला वो बहुत कम होगा, लेकिन अपराध ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम आग से खेल रहे हैं. गुरु की सेवा और विग्रहों की सेवा एक किसके समान है? आग के खेलने समान है, आग से खेलने के समान है. अगर ध्यान नहीं होगा तो जो प्राप्त करना है उसके कई गुना आपको क्या होगा? लॉस होगा, तकलीफ होगी अपराधन कारण. इसलिए बहुत ही डेंजरस है कलयुग में विशेष करके, तो बहुत ही उसमें सावधानी बरतने. तो ये सावधानी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में दिन ब दिन मंदिर कम होते जा रहे हैं. इसलिए कभी जाते हैं हम साउथ इंडिया में तो बहुत सारे मंदिर दिखाई पड़ते हैं. इसलिए मंदिर भी जाना भी बहुत कम हो गया लोगों का. तो जाते भी है तो हमारा ध्यान क्या होता है? मैं जब बाहर आऊंगा तो मेरी चप्पल मिलेगी कि नहीं. तो ये ध्यान से, ये भावना से हम अंदर जाते हैं. विषय आसक्ति बनाए रखना, इसका ज्वलंत उदाहरण है. भगवान के पास भी जाते हैं तो चप्पल के बारे में सोचते जाते हैं. इसलिए साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो चप्पल स्टैंड पे क्या होता है? नोटिस लगा होता है, कृपया आपके जूते और मन को यहां पे उतार के रखिए, ताकि अच्छी भावना से आप अंदर जाए. और अंदर भी जाते हैं तो वो इतना अंधेरा होता है कि पता नहीं चलता कि भगवान कहां है. ढूंढना पड़ता है, कहां हो तुम भगवान, दर्शन देगा दे रहे भगवंता, इस पर गाना पड़ता है. और तभी आपके नसीब से अगर कोई पुजारी दिया लगा रहा है अंधेरे में तो भगवान का चेहरा दिखाई पड़ता है, तो खुश होते हैं कम से कम दर्शन हो गया. इसलिए सर झुकाते हैं, और जैसे सर झुकाते हैं तो आपके सिर पे हाथ पड़ता है, तो लगता है कि पहली बार मैं आया भगवान के दर्शन के लिए, भगवान खुश होकर मेरे हाथ पे सिर रख रहे हैं. लेकिन जब ऊपर हाथ उठाते हैं तो पुजारी बोलता है दर्शन के 50 रुपए निकालो. तो यह अवस्था है कलयुग में अर्च विग्रह की, तो यह भी संभव नहीं है. इसलिए आखिरी रास्ता बचता है, वो है भगवान का नाम, क्योंकि सबसे आसान है, सरल है. छोटे से छोटा बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है. बच्चा क्या, जानवर भी इसमें भाग ले सकते हैं, जैसे हम देखते हैं झारखंड की लीला में. इसलिए ये मार्ग है सबके लिए है, छोटे से छोटा बच्चा लेकर बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति जो मृत्युशैया पर है, जिसकी खटिया खड़ी होने वाली है, उसके लिए भी है भगवान का हरिनाम. इसलिए कहते हैं फ्रॉम ऊम टू टूम, मां के गर्भ से लेकर स्मशान यात्रा तक हरेक के लिए है भगवान का नाम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. क्योंकि मां के गर्भ में किसने भक्ति की? प्रहलाद महाराज. और कौन थे? परीक्षित महाराज. और मृत्युशैया पे आजा मिलने. तो ये सबसे आसान है, सरल है. दूसरा फायदा क्या है? सबसे बहुत कम समय में हम उसका फायदा मिलता है. कितना समय लगता है एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में? कुछ सेकंड लगते हैं, उसमें भी हम हमारा जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं. उसका ज्वलंत उदाहरण है खटवांग महाराज. एक क्षण में उनको पता चला कि मेरा आखिरी क्षण बाकी है, तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवत धाम चले गए. और सबसे सेफेस्ट और श्योरेस्ट, सबसे सुरक्षित, सुरक्षा का चक्र है हरे कृष्ण महामंत्र. क्योंकि भगवान ने वचन दिया है बॉन्ड पेपर लिख के कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो भी मेरा स्मरण करेगा मृत्यु के समय, देह त्याग करते समय, वो मेरे धाम में आएगा. यम यम वापी स्मरण भाव, अंत काले च मामेव स्मरणोक्ता. और अंत में बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम्. तो भगवान ने लिख के दिया है बॉन्ड पेपर पे, और कोई सबूत की जरूरत नहीं हमें. इसलिए एकमात्र उपाय है. तो हरिनाम के लिए कम से कम सामग्री लगती है जो भगवान ने ऑलरेडी दी है, ये मनुष्य शरीर. और उसमें भी सिर्फ हमें क्या करना है? एक जीवा, दो कान और दो हाथ, यही काफी है भगवत धाम जाने के लिए. एक जीवा, दो कान और दो हाथ, इतना भी सामग्री हमारे पास है तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाना हमारा गारंटी है. अगर हम स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे और स्पष्ट रूप से ध्यान पूर्वक सुनेंगे हरे कृष्ण महामंत्र. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो कलयुग के जीव है, जो क्या है, दुर्भाग्य है, वो भी भाग्यवान बन सकते हैं. सबसे भाग्यवान सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेके, क्योंकि शास्त्र में तीन प्रकार के लोग बताए हैं, एक महाभाग्यशाली, दूसरा दुर्भाग्यशाली और तीसरा महादुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली कौन है? जो भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करता है ध्यान पूर्वक, हाँ वो है भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली कौन है? जो कभी भक्तों के संपर्क में आता नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, वो दुर्भाग्यशाली। और महादुर्भाग्यशाली कौन है? जो भक्तों के संपर्क में आता है, हरे कृष्ण का जप करता है और फिर से माया की गोद में चला जाता है, फिर से माला हाथ से छूट जाती है, गले से कंठी माला निकलती है, वो महादुर्भाग्यशाली है। इसलिए अगर भाग्यवान बनना है तो क्या करना है? भगवान के नाम का आश्रय लेना है। इसलिए कलयुग में नाम मात्र आधार, एक ही सहारा है, बाकी सब एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, सहारा एयरपोर्ट एक ही है अभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि कलयुग के सब दुर्भागी दुखी कष्टी पीड़ित जीव क्या है, उनके लिए एक ही सहारा है। दुखी कष्टी क्यों है? क्योंकि हम कस्टमर है, कलयुग के कस्टमर है। कस्टमर का मतलब जो कष्ट कष्ट करके मरता है वो कस्टमर। ऐसे कस्टमर के लिए एक ही दुकान खुला है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो सहारा का मतलब क्या है? जहां में हमारी हर एक जरूरत पूरी है, जैसे सुपर मार्केट होता है, सुपर मॉल, जहां पे जाएंगे अंडे से लेकर आपको डंडे भी मिलेंगे आपको। कोई चीज बाहर खरीदने की जरूरत नहीं, वो उसके कहते हैं सहारा। तो ऐसे व्यक्ति का हमें आश्रय लेना है जिसके शरण लेने से बाकी जगह हमें हाथ फैलने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं। वो एक में उस व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर उनके नाम का सहारा लेंगे तो क्या होगा? हर एक इच्छा हर एक आवश्यकता मेरी पूरी हो जाएगी, क्योंकि सुपर मार्केट है, यहां कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भगवान के दरबार में आएगा वो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। इसलिए सहारा लेने का मतलब क्या? दो फायदे होते हैं, हमारे दुखों का नाश होता है और हमारी आध्यात्मिक दृष्टि भी देखभाल होती है। तो अंश के नाते हमारा यही कर्तव्य है, हम पूर्ण की शरण ले, तभी हमारा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। जब पूर्ण की शरण लेते हैं तो जीवन परिपूर्ण हो सकता है। तो भौतिक वस्तु चीज व्यक्ति का सहारा लेने का मतलब क्या है? कि जानबूझकर भव सागर में डूब जाना। हाँ, यहां तक कि अन्य देवी देवता भी है, 33 करोड़ देवी देवता, उनका भी अगर सहारा लेंगे तो किस प्रकार है? ये खुद रुद्रासुर बता रहे 36 खंड में भागवतम के, और किसको बता रहे? देवताओं के राजा इंद्र को, कि जो भी भगवान के बिना, भगवान के नाम के बिना, भक्तों के बिना और किसी का भी सहारा लेता है वो किसके समान है? वो भव सागर पार करने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एक पत्थर की नाव को, पत्थर की नाव में बैठकर। एक तो पत्थर की नाव है और इतना बड़ा भव सागर है, जिस क्षण पत्थर की नाव पानी पे रखेंगे तो क्या होगा? नाव के साथ आप भी डूब जाएंगे। कभी पत्थर तैरते नहीं, सिर्फ रामायण में होता है। इसलिए एक कोशिश है बाकी देवताओं का आश्रय लेना, किसके समान है? यहां तक कि शिवजी और ब्रह्मा जी भी हमको मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए किसके समान है? एक पत्थर की नाव लेकर भव सागर पार करने के समान है। और दूसरा बहुत ही कठोर उदाहरण देते हो, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये भागवतम का उदाहरण है। खुद रुद्रासुर एक महाभागवत बता रहे देवताओं के राजा को, जो भी देव देवताओं का सहारा लेता है हाँ भव सागर पार करने के लिए, वो किसके समान है? एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर भव सागर पार करने के समान है। बहुत कठिन है इसको डाइजेस्ट करना, लेकिन ये कटु सत्य है। एक तो कुत्ता है, कितना तैर सकता है? एक तो आपका वजन नहीं लेगा वो, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, और तैरेगा भी तो कितना तैर सकता है? एक छोटा सा जलाशय भव सागर पार करना बहुत कठिन है। और उसने भी कोशिश भी की तैरते तैरते, तो वो भी डूब जाएगा और आप भी डूब जाएंगे, और अगले जन्म में वही पूंछ जो आपने पकड़ी है आपके पीछे आएगी, हाँ आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि अंत काले चे मामे वो स्मरण मुक्त हुआ कले वरम। जो भावना होगी अंत समय मृत्यु के समय, हाथ में पूंछ होगी, कुत्ते के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही भावना से आप अगला जन्म कुत्ते का लेके आएंगे। इसलिए बहुत डेंजरस है इस प्रकार आश्रय लेना। इसलिए एक ही क्या है आश्रय इस कलयुग में, वो है भगवान के नाम। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि जीवन में करना क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए मनुष्य ने, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है? सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम श सामान्य मितत पशु भीर नरानम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भीर समान। खाना पीना सोना मैथुन करना और रक्षा करना ये समान है किसमें? पशु जानवर और में मनुष्य में। अगर वही चीज हम मनुष्य जन्म में आकर करते रहेंगे तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या हम एक जानवर की तरह ही पशु के समान जीवन बिताएंगे? जिस प्रकार बहुत सुंदर कथा थी है, किस प्रकार कलयुग में आदमी जानवर की तरह बर्ताव करने लगा, क्यों मनुष्य कलयुग में एक जानवर की तरह बर्ताव करता है अगर भक्ति में नहीं है, भक्तों के संग में? तो एक कथा आती है, जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण के पहले उन्होंने सबसे पहले किसको निर्माण किया? गधे को। उसको निर्माण किया और बुलाया, तुम्हारा नाम होगा गधा, तुम्हारे बाप का नाम होगा गधा, तुम्हारे परदादा का नाम होगा गधा, एवं परंपरा प्राप्तम। इसलिए आपको कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि हरेक के ध्यान में आपका नाम रहेगा, क्योंकि सबका नाम एक ही होगा गधा। और आपका कार्य क्या रहेगा? जो आपका नहीं उसका भार उठाते घूमते फिरना। गधे का एक भी कपड़ा नहीं था होता है, फिर भी सारे गांव का कपड़ा लेके वो घूमते रहता है, हाँ, अपने बोझ लेकर। और किसके लिए? छोटे से घास के लिए, जो रास्ते के साइड में कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? गधा। और तुम्हारा आयु कितना होगा? भगवान बोलते हैं 50 साल। तो बोलता है इतना कार्य, इतना कठिन कार्य, और 50 साल में जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे 50% डिस्काउंट दीजिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो उसका आयु कितना हो गया? 25 साल। 25 साल बच गए उसके, भगवान के पास। उसके बाद भगवान ने निर्माण किया कुत्ते को, तो उसको बुलाया और कहे कि आप सबसे वफादार होंगे, अपने मालिक के लिए, उसकी स्टेट के लिए हमेशा चौकन्ना रहेंगे, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार होंगे सिर्फ एक टुकड़े के लिए, और हमेशा वफादारी करेंगे आप अपने मालिक की, जो अमानत है उसको संभालने के लिए आप हमेशा चौकन्ना रहेंगे। और आपकी आयु कितनी होगी? 30 साल। तो बोलता है ये मुझे बहुत कठिन लग रहा है ये कार्य, मुझे भी गधे के समान थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, गधे को आपने दिया मुझे क्यों नहीं दे रहे आप, तो मुझे 50% डिस्काउंट चाहिए। तो उसका आयु कितना हो गया? 15 साल। उसके बाद भगवान ने बंदर को निर्माण किया, बंदर को कहा तुम बंदर हो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारते रहोगे बस, हाँ, शरीर में कोई कपड़ा नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन यहां से वहां कूदते रहोगे, और तुम्हारा आयु कितना हो गया? 20 साल होगा। तो बोला बाकी लोगों को डिस्काउंट दिया, हमें क्यों नहीं, हमको भी डिस्काउंट दीजिए। तो उसका आयु कितना हुआ? 10 साल। तो इस प्रकार अंत में भगवान ने मनुष्य को निर्माण किया और कहा कि सबसे होशियार तुम होगे, सबसे जल्दी तुम भगवत धाम होगे, इसलिए तुम्हारा मनुष्य क्या हुआ, जीवन नाम क्या होगा? मनुष्य। बहुत ही बुद्धिमान होगे, बुद्धिमान मनुष्य प्राणी कहते हम, और तुम्हारा आयुष्य बहुत ही कम होगा, सिर्फ 50 साल, ताकि आप जल्दी भगवत धाम। बोले नहीं, मुझे यहां पे बहुत भोग करना है, मेरा 50 साल ही क्यों, मुझे जो भी बचा हुआ है जानवरों का दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं पहले 20 साल वो आदमी की तरह बर्ताव करता है, उसके बाद क्या करता है, गधे की तरह काम करने लगता है अगले 30 साल। जिस 50 साल में शास्त्र कहता है कि सब कुछ त्याग करके वानप्रस्थ रहना चाहिए, हाँ, फॉरेस्ट में जाना है, फॉरेस्ट नहीं, हाँ, फॉरेस्ट नहीं, रेस्ट करने के लिए नहीं, फॉरेस्ट में, हाँ, फॉरेस्ट में क्यों जाना है? भगवान की भक्ति करने, भगवान को प्राप्ति करने के लिए। तो उस 50 साल में शास्त्र कहते हैं कि वन में जाना चाहिए, उस 50 साल में वो घर बांधना शुरू करता है प्रोविडेंट फंड लेके। तो ये अवस्था है कलयुग की। और भगवान ने सिर्फ 4 ही आश्रम दिए है, लेकिन जब आदमी जानवर की तरह बर्ताव करता है, हम देखते कैसे करता है, जब करता है भक्ति नहीं करता तो क्या होता है, कलयुग का उसको वरदान मिलता है। कलयुग में भगवान ने 4 ही आश्रम दिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन कलयुग का वरदान क्या है, जब हम भक्ति नहीं करते, भगवान के नाम का आश्रम नहीं लेते, तो हमको गिफ्ट में, कलयुग का गिफ्ट मिलता है वृद्धाश्रम, ये कलयुग का वरदान है। तो ऐसे समय वो क्या करता है, पहले 20 साल मनुष्य की तरह जीता है, अगले 30 साल एक गधे के समान, और उसके बाद जो 15 साल है, जो भी धन कमाया है 50 साल में उसकी रक्षा करने में एक कुत्ते के समान पूरी अपनी जानबाजी लगाते हैं। और अंत में जो कितने साल है, 10 साल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़े मारना, कूदना का मतलब है एक बच्चे के घर से दूसरे बच्चे के घर में खुद ही मार देता है, क्योंकि एक जगह उसको कोई रखता नहीं। तो ये मनुष्य की अवस्था है जब उसको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंत्य नारायण स्मृति, और उसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, अजामिल। ऐसे हमने बताया अजामिल का नाम अजामिल क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा वेश्या को अजामिल। तो ऐसा अजामिल है, वो मृत्यु के समय उसने क्या किया, अपने पुत्र को पुकारा, फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि उन्होंने सोचा कि मुझे पुकारा है। इसलिए जो अजामिल सारी जिंदगी भर तीन प्रकार से पाप कर्म करता था, काया वाचा और मनसा, उसके पास कौन सी गाड़ी थी, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, ये गाड़ी जोर से भगा रहा था वो पाप करने के लिए, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में क्या हुआ, उसके सामने तीन यमदूत आए। तीन क्यों आए, क्योंकि तीन प्रकार से पाप किया था, काया वाचा मन से। लेकिन उसने उस समय क्या किया, अपने पुत्र को पकारा, उसके आसक्ति के कारण। तो चार विष्णु दूत वहां पे, चार क्यों आए, कि उसने चार अक्षर बोले नारायण। तो सोचिए हम कितना बोल रहे हैं, 16 अक्षर, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे।
तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए मृत्यु से पहले हमें भगवान का नाम लेना है, अंत्य नारायण स्मृति। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग में हमें मृत्यु के बाद बताया जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो मुर्दा क्या बोलेगा। इसलिए हरे कृष्णा में आपको बताया जाएगा कि सत्य क्या है, क्योंकि वेद व्यास पहले ही श्लोक में हाथ में गीता नहीं भागवतम लेके कह रहे, पत्य सत्यम परम धीमे ही, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सत्यम परम धीमे ही। तो यही सत्य है, परम सत्य क्या है कि भगवान का नाम। तो परीक्षित महाराज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए, कलयुग के नमूने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उससे और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मनुष्य जीवन में नहीं है। और ये दो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो चाणाक्ष तात्पर्य सुखदेव महाराज है, उन दोनों प्रश्न का जवाब एक ही सवाल जवाब में दे रहे। तो प्रश्न क्या है, उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति मृत्युशैया पर रहे उसका प्रथम कर्तव्य क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक को ये समस्या है, मृत्युशैया पे जो व्यक्ति है उसका सर्वोच्च कर्तव्य क्या है, प्रथम कर्तव्य क्या है। और दूसरा प्रश्न क्या है, जो साधारण व्यक्ति है जिसकी खटिया अभी तक खड़ी नहीं हुई, उसका कर्तव्य क्या है, बहुत आराम से जी रहा है कलयुग में, उसका कर्तव्य क्या है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब देते हैं भागवतम के पहले स्कंद में दूसरा अध्याय 14वां श्लोक, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। वो कहते हैं कि अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन भगवान को, जो भक्तों के सच्चे कौन है, रक्षक है, सात्वताम पति, बाकी पति आपका पत्ता कट कर देंगे, लेकिन ये सात्वताम पति हमेशा रक्षा करेंगे। ऐसे भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन का मतलब है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करना और उनका स्मरण करना और पूजन करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रूफ है भागवतम का कि हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य क्या है। बाकी चीजें चलती रहेगी, वो नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अंतिम जो परीक्षा है मृत्यु, उसमें अगर पास होना है तो हमें 100% मार्क लेना होगा। भौतिक जगत में 80-80 पास हो सकते हैं हम, 30% मार्क पर के अगले स्कूल में जा सकते हैं, क्लास में, लेकिन यहां पे 100% भगवान की याद करना ही है, भगवान को रिमेंबर करना ही है, रिमेम्बर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको रिमेम्बर बनना पड़ेगा 84 लाख यूनि में। रिमेम्बर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिमेम्बर फिर से मेंबर बनना पड़ेगा 84 लाख यूनि में। इसलिए मृत्यु क्या है, अतिथि के समान है। अतिथि का मतलब जिसको के लिए कोई डेट नहीं, कोई समय नहीं, कभी भी आ सकता है। तो जैसे हम सुबह बता रहे थे, ये मर्त लोक है। इस लोक का नाम क्या है, मर्त लोक, जहां पे हर क्षण मृत्यु पीछा कर रहा है हर एक जीवात्मा का, क्योंकि हर एक कोई अपने पीछे टैग लगा के आया है डेथ सर्टिफिकेट का, उसका डेट फिक्स है, सिर्फ मृत्यु उसकी राह देख रहा है। तो इसलिए इसे मर्त लोक करते हैं। इस मर्त लोक में रहकर इतने हम बिंदास घूम रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति युद्ध भूमि पे आराम से घूम रहा है, जिसके पैरों के नीचे, हर एक पैर के नीचे क्या है, बम। तो कितना धोखादायक है ये मर्त लोक, लेकिन फिर भी हम आराम से घूम रहे, कोई मृत्यु का भय नहीं। लेकिन उसके विपरीत भागवतम के 11वें स्कंध में बताया है, जो मछली है वो कितनी परेशान है, हर क्षण उसको लगता है कि मृत्यु मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए एक जगह मछली रुकती नहीं, देखा है अपने मछली को, वो एक जगह रुकती नहीं, हमेशा इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि मृत्यु पीछा कर रहा है। हालांकि पानी उसका जीवन है, पानी में उसको खाद्य मिलता है, पानी में उसको सांस मिलती है, फिर भी उस जगह वो परेशान है कि मृत्यु मेरा पीछा कर रहा है, मुझे छुपना चाहिए, मुझे बचना चाहिए। लेकिन हम इतने मूर्ख है, मछली से भी ज्यादा मूर्ख है, जो हमें कभी मृत्यु का भय नहीं लगता। इसलिए मृत्यु क्या है, एक अतिथि के समान है। मृत्यु को जैसे हम बता रहे सुबह कि कोई भी मिस यूनिवर्स बहका नहीं सकती अपना अंग प्रदर्शन करके, और कह सकते कि आप अभी चले जाओ, हो गया आपका काम, तो उसके बहकाव में आएगा नहीं। कोई मिस यूनिवर्स को मृत्यु को बहका नहीं सकती, कोई बिल गेट सबसे बड़ा रईस आदमी रिश्वत नहीं दे सकता मृत्यु को, तो ये पैसा ले लो और चले जाओ, कल अपॉइंटमेंट लेंगे हम की नहीं। कोई बड़ा पंडित वाद विवाद में मृत्यु को परास्त नहीं कर सकता। इसलिए एज श्योर एज डेथ, तो ऐसे मृत्यु की पराजय करना है तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने क्या किया, जब उनको लेने के लिए विमान आया तो उस विमान को चढ़ने के लिए क्या नहीं थी, सीढ़ी नहीं थी, तो साक्षात मृत्यु उनको मदद करने के लिए आया, तो मृत्यु के सिर पे पैर रखकर वो भगवत धाम चले गए, क्योंकि उन्हें भगवान की नाम की आश्रय ली थी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इसलिए सारे वेद शास्त्र पुराण चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि सारों का सार क्या है, सारे वेद शास्त्र जितना भी है अध्यात्म में, उसका एक ही उद्देश्य है, हमेशा भगवान को याद रखे, कभी भी भगवान को भूले नहीं। स्मर्तव्यम सतत विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोहि किंकरम। निरंतर भगवान का, दोनों का अर्थ एक ही है, हमेशा भगवान को याद करे और कभी भी भगवान को भूले नहीं, तो अर्थ दोनों का एक ही है, क्योंकि आयुष्य बहुत ही कम है, कम वक्त है, गाली नहीं दे रहे हम कम वक्त करके, कम बहुत ही वक्त बहुत ही कम है, कम वक्त है। इसलिए चाणक्य कहते आयुष क्षण एकोपी, लेकिन इस छोटे से आयुष में भी हम क्या कर रहे हैं, हमेशा रोते रह रहे हैं, जो हाथ चीजें हमसे हाथ से निकल रही है, हाथ से निकल चुकी है और हाथ से निकलने वाली है, तो हमारा आयुष किसमें जाता है, शोक में और भय में, ना सोचती ना कांक्षती, सोचते नहीं सिर्फ दुख करते रहते हैं। दुख किस बात का है कि छोटी छोटी जो चीजें निकल जा रही है, हाथ से निकल गई है और निकल जाने वाली, लेकिन इतने मूर्ख है कि सबसे अनमोल चीज हमारे हाथ से निकल जा रही है, वो है दुर्लभ मानुष जन्म, और उससे भी अनमोल है भक्तों का संग, और उससे भी अनमोल है भगवान का नाम, वो हमारे हाथ से निकल जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, लेकिन उसके लिए हम दुख नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। इसलिए 16 अक्षर वाला महामंत्र ही आत्मा पे जो 16 प्रकार के आवरण है उसको हटा सकता है, और कोई नहीं हटा सकता। 16 अक्षर वाला महामंत्र ही 16 प्रकार के आवरण है, हर बद्ध जीवात्मा में 16 आवरण होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्रकार के वायु और 1 सूक्ष्म शरीर, 16 आवरण होते हैं, सारे आवरणों से एक साथ हटा देता है यह हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हमको बचा सकता है। ऐसे हमने बताया तीन गुणों से, तीन तापों से मुक्ति मिल सकती है और हरेक प्रकार के ऋण से हमें मुक्त कर सकता है यह हरे कृष्ण महामंत्र। तो यह शक्ति है, इसलिए बोलते हैं कि मुक्ति देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है मुकुंदा। इसलिए उनका नाम क्या है? मुकुंदा, मुक्ति प्रदाता। इसलिए शिवजी भी पार्वती से कह रहे मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु। इसलिए हरेक प्रकार से ऋण से मुक्त होना है तो हमें क्या करना है? मुकुंदा की शरण लें, क्योंकि छह प्रकार के ऋण होते हैं हरेक जीवात्मा पे। पहला ऋण क्या है? देवताओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, सामान्य जनों के प्रति, स्वजनों के प्रति, मनुष्य के प्रति, पितरों के प्रति। इसलिए इस श्लोक में कहा है देवर्षि भूतापनुनाम पितृनाम न किंकर नायम ऋणिच राजन सर्वात्मना यह शरण्य शरण्यम गतो मुकुंद परिवर्तिकोत्तम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का आश्रय लेना, क्योंकि हमें और कोई सहारा नहीं। इसलिए हमारे अंतकरण में भगवान का प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन है। इस प्रकार ये सबसे अनमोल धन है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि वो लॉक हो गया, लॉकअप हो गया। जिस प्रकार अली बाबा और 40 चोर में हम देखते हैं, जब तक अली बाबा बोलता नहीं ये मैजिक मंत्र खुल जा सिम सिम, तब तक वो धन उसे प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो बंद है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा जब तक हम ये मैजिक मंत्र नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्योंकि यही हमारे जीवन में क्या लगेगा? प्रकाश लगेगा। इसलिए बताया जाता है कि आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी कार्य कीजिए, आपके जीवन में आशा के किरण नहीं होगा जब तक आपके हृदय में, हृदय के क्षितिज पे हरि नाम का सूरज उदय नहीं पड़ता। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि संध्या के समय है, कितने भी स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट बल्ब जलते होंगे, हाँ सूर्या हो जो भी हो, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? अंधेरा हो गया। सारे जगत के लाइट से एक साथ लगे हम लाएंगे और लगाएंगे उनको तो क्या कहते हैं? इतने लाइट लगने के बावजूद क्या कहते हैं? अंधेरा हो गया। इसके विपरीत जब सूरज का उदय भी नहीं हुआ सुबह सुबह तो हम क्या कहते हैं? उजाला हो गया। उसी प्रकार कितना भी हम करेंगे हमारे जीवन में अंधेरा ही रहेगा जब तक हरिनाम रूपी सूरज हमारे जीवन में उदय नहीं होता, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे और सबको अंधेरे में रहेंगे। तो अंत में हम बोले देखेंगे कि हरिनाम लेने से होता क्या है, क्या फायदा है इसका। तो ये प्रश्न हमको एक बार जब हम बोरीवली से आ रहे थे ट्रेन में, तो मैं और हमारे मित्र थे मंदिर के, तो हम दोनों ही बैठे थे काफी, वो बोगी खाली था ट्रेन का और एक सामना बेवड़ा पूरे नशे में था, पूरा स्पिरिट में था और झूम झूम के आ रहा था और हमको देखते बोला कि ओ महाराज ये क्या होलिया बना रखा है, हाँ पूरा गांजा करके रखा है, हाँ और हाथ में क्या है? हरे कृष्णा माला लेकर घूम रहे हैं, हाँ माला छोड़ो किसी माला नाम की लड़की को लेकर घूमो उससे फायदा होगा, हाँ और आगे बोलने लगा इससे क्या होगा? हरे कृष्णा कर रहे आप। तो हमने सोचा कि उसकी भाषा में हमको बोलना होगा नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। तो हमने बस पार्टी में जाते हुए पीछे जब बैठते बस में, तो हमारे बस का आखिरी जो कमरा है उसमें हम पीछे बैठे थे, तो सामने से जो भी ट्रक आता है उसमें अलग अलग मुहावरे होते हैं, मुहावरे या शायरी होती है, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह। तो हमने एक पढ़ा था, तो हमने सोचा कि उसके नशे के उतारने के लिए यही योग्य है क्योंकि वो भी नशे में है, अगर नशे की बात करेंगे तो वो समझ पाएगा। इसलिए हमने बताया जप करने से होता है क्या, इसने प्रश्न पूछा जप करने से क्या होता है, तो हमने बताया कि जाम से जाम पीने से होगा क्या। ध्यानपूर्वक सुने, बहुत अच्छी शायरी है, बाद में माशाल्लाह बोलना पड़ेगा आपको। जाम से जाम पीने से होगा क्या तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, जाम से जाम पीने से होगा क्या तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, हरि नाम से प्यास बुझा कम से कम तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो बहुत खुश हो गया, अगले दिन मंदिर में आके जप माला लेके चला गया। तो लोग पूछते हैं कितना जप करना चाहिए, तो हम कहते हैं इतना जप करके हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो लोग पूछते हैं जप करने से होगा क्या, खाने को मिलेगा क्या? तो हम बोलते हैं राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। इसलिए जो सबसे बड़े हमारे अनर्थ है वो किसके समान है? पत्थर के समान है। तो पत्थर रूपी दिल लेकर हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। रामायण में हम देखते हैं सिर्फ कि पत्थर तैर सकते हैं, लेकिन ये पत्थर तैरना मुश्किल है जब तक इस पे हम राम का नाम या हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लिखते। तो ये देखकर रावण भी आश्चर्यचकित हुआ। तो मंदोदरी कहने लगी अभी तो सीता को दे दो, अभी सेतु बांध दिया, हाँ अभी पानी पे पत्थर तैरने लगे, अभी ये क्या है? एक लक्षण है आपके सर्वविनाश का, अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि पानी में पत्थर तैरे। तो बोलने लगे इसमें बड़ी बात क्या है। उसके पहले राम जी भी देखते और बहुत खुश होते हैं और सोचने लगे कैसा संभव है। तो क्या करते हैं शाम के समय अकेले आते हैं जब कोई वानर आजू बाजू में, और वो क्या करते हैं पत्थर लेके देखते हैं कि कैसे संभव है। तो पत्थर लेके वो छोड़ देते हैं तो डूब करके नीचे जाता है, तो उनके कंधे पे हाथ पड़ता है हाँ, और हनुमान जी कहते हैं ये आपका काम नहीं, आपके नाम का काम है, जिसको आपने अपने खुद के हाथ से छोड़ा है वो बहुत सर में डूबेगा ही। उसके बाद ये पता चलता है तो मंदोदरी कहते हैं कि अभी सीता को छोड़ दो। तो रावण कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, पत्थर भी तैरना, मैं भी तैर सकता हूं पत्थर को। तो बोलते कैसे संभव है, वो पत्थर लेके अपने सिर को लगाता है और कुछ मंत्र बोलता है और छोड़ देता है। तो आश्चर्यकारक क्या होता है मंदोदरी के, वो पत्थर तैरने लगता है। तो मंदोदरी बहुत खुश होते है कि राम की इतनी शक्ति उसमें है। तो पूछते हैं बताओ बताओ कैसे किया आपने, बोलता है ये सीक्रेट है। नहीं नहीं बहुत मूड में आती है, बोलते हैं अंत में नहीं बताना पड़ेगा। तो बोलता है बताऊंगा लेकिन एक शर्त पे, जो चाहिए मुझे आप दोगी। ठीक है बोलते, तो बोलता है मैंने पत्थर उठाया सिर को लगा और बोला तुझे राम की कसम। तुझे भगवान की कसम अगर तैरेगा नहीं तो, मेरी इज्जत का सवाल है। तो इस प्रकार राक्षस भी है वो भी भगवान के नाम पर विश्वास रखते। तो हम एक बद्ध जीवात्मा है हाँ, ऐसे जीवों को है एकमात्र आधार है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम खलो नास्ते व नास्ते व गतिरता। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे जब समय मिलेगा, ये ट्रेलर था हाँ? अगले समय जब समय मिलेगा तो निश्चित रूप से इससे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, शील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।
या आठवड्याच्या काही महत्वाच्या सूचना पुढच्या फक्त दोनच मिनिटांमध्ये, भक्तांना विनंती की कृपया त्यांनी ध्यानपूर्वक सूचना ऐकाव्या। श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं आपल्याला शिकवलंय पुस्तकातनं की 99% आपली भक्ती हरिनामाच्या जपावरती आधारित आहे आणि बाकी सर्व जे काही करतोय ते 1%। नक्कीच तो हरिनामाचा जप रोज करत असल्यामुळे अतिपरिचयात अवज्ञा हे देखील स्वाभाविकपणे त्यात येतं। तर गेले 4 प्रवचनं अतिपरिचयात अवज्ञा झाडून टाकण्याकरता सुदामा प्रभू इथं खास आलेले, रघुपीनाथ प्रभूंनी त्यांना विनंती केली की कृपया कोल्हापूरला जाऊन सर्व भक्तांच्या सर्व भक्तांना कृपया या हरिनामाच्या महिमेचा उपदेश करा।